Jai Jai Shri Chaitanya Jayo Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jayo Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
हरे कृष्ण, तो आप सब भक्तों का आज कार्तिक मास के पहले दिन में हार्दिक स्वागत है। और आज हम कार्तिक मास की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। और उससे पहले आज हमारे गौड़िया वैष्णव आचार्य में बहुत महान आचार्य मुरारी गुप्त जी का तिरुभाव दिवस है, तो उसके विषय में श्री रामानंद महाराज की समाधि पुस्तक से इसका थोड़ी चर्चा करके फिर हम कार्तिक मास के ऊपर चर्चा करेंगे। श्री चंद्रशेखर आचार्य के शिष्य श्री मुरारी गुप्त असामान्य रूप से विनयी थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के संग जीवन पर्यंत उनका घनिष्ठ संबंध रहा। यद्यपि मुरारी कक्षा अनुसार उनसे वरिष्ठ थे, वे वाद विवाद में श्री निमाई पंडित से सर्वदा पराजित हो जाते थे। एक बार आवेगपूर्ण तर्क वितर्क करते हुए एक दूसरे को धक्का देने लगे। उनकी हाथापाई गंगा के भीतर भी चल रही थी। उन्होंने इतना कीचड़ उछाला कि स्त्रियां अपने पात्रों में जल नहीं भर पाई तथा ब्राह्मण ठीक ढंग से स्नान नहीं कर सके। शिवास आंगन में होने वाले रात्रिकालीन कीर्तनों में मुरारी गुप्त गौर हरि को भागवतम के सुरीले गायन द्वारा अमोदित करते। वे दक्षतापूर्वक गायन व नृत्य भी करते। मुरारी गुप्त ने श्री चैतन्य की समस्त नदियां लीलाओं में उनकी सेवा की। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त के पूजनीय भगवान रामचंद्र के प्रति उनकी आसक्ति की परीक्षा ली। भगवान गौर सुंदर ने मुरारी को वजेंद्र कुमार श्री कृष्ण की परम मधुरिमा एवं स्थिति का उपदेश दिया। मुरारी, बस कृष्ण की आराधना करो तथा उनकी शरण ग्रहण करो, केवल उनकी सेवा ही मन को तुष्ट कर सकती है। यद्यपि श्री कृष्ण के प्रति मुरारी गुप्त का किंचित रुझान हो गया, भगवान रामचंद्र के संग को खो देने के विचार ने उन्हें विध्वस्त कर दिया। उस रात्रि उन्होंने भगवान राम से प्रार्थना की कि वे उन्हें प्राण हर ले। उन्होंने ऐसी याचना इसलिए की क्योंकि वे श्री राम की सेवा त्याग नहीं सकते थे और न ही वे श्री चैतन्य के अनुरोध का अनादर कर पा रहे थे। मुरारी गुप्त जी श्री राम जी के भक्त थे, वो उनका हनुमान जी का अवतार बताया जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि राम की पूजा छोड़ो, श्री कृष्ण की भक्ति से तुम्हें तुष्टि मिलेगी। तो मुरारी गुप्त जी अब द्वंद में थे, राम जी की भक्ति छोड़ नहीं सकते थे और चैतन्य महाप्रभु का अनादर नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने राम जी से प्रार्थना की कि आज मेरे प्राण हर लो, मैं क्या करूं। रात भर क्रंदन करने के उपरांत मुरारी ने श्री चैतन्य के पास जाकर कहा, मैं क्या करूं, मैंने अपना शीश भगवान रामचंद्र के चरण कमलों में अर्पित कर दिया है, किंतु यदि मैंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के आपके आदेश का उल्लंघन किया तो मेरा क्या होगा। मुस्कुराते हुए श्री गौराय ने उत्तर दिया, मुरारी गुप्त की जय हो। मुरारी गुप्त की तुम अपनी उपासना में इतने अडिग हो कि मेरी आग्रह भी तुम्हारे मन को परिवर्तित नहीं कर सके। भगवान के पदारविंदों के प्रति एक सेवक का प्रेम एवं स्नेह इसी प्रकार का होना चाहिए। यदि भगवान भी उससे अलग होना चाहें तो भी भक्त उनके चरण सेवाओं के आश्रय का परित्याग नहीं कर सकता। अपने स्वामी के प्रति तुम्हारी अटल श्रद्धा की परीक्षा लेने हेतु ही मैंने बारंबार तुम्हें भगवान राम की आराधना छोड़कर भगवान कृष्ण की अभिनंदन करने के लिए कहा। हर्ष प्रकट करते हुए श्री चैतन्य ने मुरारी गुप्त से कहा, तुम भगवान राम के नित्य दास हनुमान के अवतार हो, अतएव तुम भगवान राम की आराधना का त्याग नहीं क्यों करो। अन्य दास श्री चैतन्य ने जानकी लक्ष्मण तथा स्तुतियों एवं स्तवों का वाचन करते हुए वानरगण के संग अपने भगवान राम का रूप प्रकट किया। चैतन्य महाप्रभु की, सीता राम लक्ष्मण हनुमान की। उन वानरों के मध्य स्वयं को अपने मूल हनुमान रूप में देखकर मुरारी गुप्त मूर्छित हो गए।
कटवा में जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो मुरारी एक शिशु की भांति बिलखते हुए उनके पास खड़े रहे, और जब श्रीमान महाप्रभु जगन्नाथपुरी को चले गए तब भगवान के संग का आनंद लेने हेतु मुरारी सब पत्नी प्रत्येक वर्ष वहां आते थे। चूंकि मुरारी आयुर्वेदिक वैद्यों के वंश में प्रभुत हुए थे, उन्होंने एक चिकित्सक के रूप में कार्य किया, किंतु उनका रोगोपचार निराला था, जिसमें उन्होंने रोगियों के देह विकार का निवारण तो किया ही, साथ ही उन्हें भव रोग से भी मुक्ति दिलाई। उन्होंने ही सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र लिखा, जो श्री चैतन्य चरित महाकाव्य नामक एक महत्वपूर्ण संस्कृत कृति है। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। श्री मुरारी गुप्त जी की, मुरारी गुप्त तिरुभक्ति महामहोत्सव की।
तो कार्तिक मास के महिमा का व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अध्याय संख्या 22 और पर्याय संख्या 127। इसमें चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को भक्ति विधि के बारे में बता रहे हैं। सर्वथा शरणापति कार्तिकादिव्रत चतुपष्टि अंग ऐ परम महत्व सर्वथा शरणापति कार्तिकादिव्रत चतुपष्टि अंग ऐ परम महत्व सर्वथा शरणापति कार्तिकादिव्रत चतुपष्टि अंग ऐ परम महत्व। और अनुवाद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की सर्वथा सभी परिस्थितियों में शरणापति शरणागति कार्तिक आदिव्रत का पालन करना, चतुष्टी अंग 64 अंग ऐ यह परम महत्व बहुत महत्वपूर्ण अंग। अनुवाद 34वां अंग मनुष्य को चाहिए कि सभी प्रकार से कृष्ण की शरण में जाए। 35वां कार्तिक व्रत जैसे विशेष व्रत रखे। भक्ति के 64 कार्यों में से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आज बहुत ही सुंदर उत्सव है, कार्तिक मास का प्रारंभ हो रहा है, और हम सब भक्त लोग गौड़िया वैष्णव हैं, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की प्रतीक्षा करते हैं, है ना। आज सुबह देख रहे थे मंगल आरती में कितनी भीड़ थी, और शाम को भी बहुत भीड़ होगी। तो पूरे का पूरा महीना प्रतिदिन ये उत्सव है, और कार्तिक मास की महिमा का शास्त्रों में बहुत गुणगान गाया गया है। भगवान श्री कृष्ण भागवत में दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी को बताते हैं, जब ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पन्न करने वाले थे और ब्रह्मा जी एकमात्र जीव थे, तो ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने ज्ञान प्रकट किया और उनको तप सुनाई दिया, उन्होंने तपस्या की, और बाद में भगवान के उनको दर्शन होते हैं साक्षात। तो भगवान ब्रह्मा जी को बताते हैं कि जिस तपस्या से तुम मेरे दर्शन कर पाए हो, ये तपस्या मुझसे अभिन्न है। तो कार्तिक मास में हम तपस्या करके, उसके कार्तिक मास में की गई तपस्या का विशेष महत्व बताया गया है, और इसका गुणगान सभी शास्त्रों में किया गया है, और इसका हम गुणगान करेंगे और इस व्रत का पालन करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमें श्रीमती राधा रानी की बहुत विशेष कृपा मिलेगी। कार्तिक मास श्रीमती राधा रानी का महीना है, और ये कार्तिक मास चतुर्मास का अंतिम मास है। वैसे तो मनुष्य जीवन के लिए प्रति मास प्रतिदिन प्रतिक्षण भक्ति के लिए ही है, और हमें प्रतिक्षण अपना भक्ति में उपयोग करना चाहिए, लेकिन इन 12 मासों में चतुर्मासों की विशेष महत्व बताई गई है। 4 मास, ये 4 मास में बताया जाता है कि मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा श्रवण कीर्तन करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, और ये 4 मास शुरू होते हैं जैसे कि श्रावण से, आषाढ़ से शुरू होते हैं, आषाढ़ श्रवण अश्विन और कार्तिक। तो कुछ हमारे यहाँ पे गौड़िया वैष्णव में भक्ति शर्मा जी के अनुसार ये आषाढ़ की पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक की पूर्णिमा तक है, और कई जगह एकादशी से लेकर एकादशी तक। और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि आषाढ़ की जो एकादशी है वो शयन एकादशी कहलाती है और कार्तिक की अंतिम एकादशी है वो उत्थान एकादशी कहलाती है कि इस चार महीने में भगवान क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, सो जाते हैं। तो भगवान जब विश्राम करते हैं तो भगवान के भक्त भी एक स्थान पर ही रहते हैं, चतुर्मास में ज्यादा भ्रमण नहीं करते और एक स्थान पर रहकर श्रवण कीर्तन करते हैं। और इन चार मासों में से सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है कार्तिक का मास। इन चार मास में भी हमें तपस्या करनी चाहिए, जैसा श्रवण कीर्तन करना चाहिए, उसमें कार्तिक मास में तपस्या का ओट बढ़ा देना चाहिए और कार्तिक मास में भी जो अंतिम पांच दिन है भीष्म पंचक, उसमें तपस्या और बढ़ा देनी चाहिए। तो जितनी हम तपस्या बढ़ाएंगे उतना हम श्रीमती राधा रानी की कृपा को प्राप्त करेंगे। भीष्म पंचक यानी कि कार्तिक के वो पांच दिन है जिसमें भीष्म पितामह अपने शरीर देह त्यागने से पहले वो बहुत कड़ी तपस्या करते हैं और कड़ी तपस्या करके भगवान के दर्शन प्राप्त करते हैं देह त्यागने से पहले। तो भीष्म पंचम का भी हम पालन करें, हमें करना चाहिए, जो कार्तिक के उत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के जो पांच दिन हैं। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय की। और इस कार्तिक महीने में हम देखते हैं बहुत सुंदर सुंदर उत्सव आते हैं। कौन कौन से उत्सव हैं? सबसे पहले आज ही है शारदीय रास, फिर बहुला अष्टमी, राधा कुंड का प्राकट्य दिवस और गोवर्धन पूजा, भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, और गोपा अष्टमी और रघुराज जी का तिरुभाव दिवस, दीपावली और दामोदर लीला हुई दीपावली के दिन, और भीष्म पंचक और बताइए, और तुलसी शालिग्राम विवाह है ना, हाँ तुलसी शालिग्राम विवाह है ना, तुलसी जी का प्राकट्य भी उसी दिन होता है। तो बहुत उत्सव है, हाँ प्रॉपर्टी डिसिप्लिन्स बताया उन्होंने, तो बहुत उत्सव है। और ये महीना भगवान को बहुत प्रिय है क्योंकि श्रीमती राधा रानी का महीना है। और वैसे हर समय हम देखते हैं प्रतिदिन यहाँ पर उत्सव है, सुबह सुबह इतने भक्त हैं, शाम को इतने भक्त हैं, दीपदान करते हैं, तो पूरा उत्सव का वातावरण। जैसे कल हम आए थे रात को देखा पूरे मंदिर में लाइटिंग लगी हुई है, तो पूरा उत्सव है। और सुबह सुबह देखा चार आए तो इतने भक्त, इतने बड़ा समूह, तो इस उत्सव का हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। जैसे कि आज शारदीय रास पूर्णिमा है और बताया गया है कि छह प्रकार की ऋतु होती हैं और इन छह ऋतुओं में दो ऋतुओं को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। कौन कौन सी ऋतु? शरद और वसंत। और शरद और वसंत में से भी शरद ऋतु को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि इन दो ऋतुओं में ना अधिक ठंड होती है ना अधिक गर्मी होती है। और इस शरद ऋतु के पूर्णिमा के दिन, जैसे कि अश्विन की पूर्णिमा जो कल थी, उसमें भगवान वंशीवट पर जाकर बंसरी बजाते हैं और सभी की सभी गोपियां आकर्षित होकर अपना घर बार छोड़ के मध्य रात्रि में भगवान के पास आती हैं वंशी वट पे। कृष्ण पुस्तक हम इसका वर्णन पढ़ते हैं और भगवान फिर क्या बताते हैं उनको कि इतनी रात्रि में आप जंगल में क्या कर रहे हो एक पर पुरुष के साथ, आपको एक स्त्री के धर्म का पालन करना चाहिए, आप वापस चले जाइए। तो भगवान को तर्क देते हैं वापिस जाने के लिए, तो गोपियां बहुत उदास हो जाती है, तो गोपियां वापिस नहीं जाती, वो खड़ी रहती हैं, भगवान उनकी परीक्षा ले रहे होते हैं और फिर बाद में भगवान वंशी वट पे उनके साथ रासलीला करते हैं। तो शारदीय रास कहलाता है। वैसे तो आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपूर्ण जी बताते हैं भगवान अपनी इच्छा से छह की छह ऋतुओं को एक साथ प्रकट करवा सकते हैं, जो उनकी लीला में सहायक हो भगवान वही ऋतु प्रकट करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी इस शारदीय रास लीला का बहुत महत्व है और सभी ऋतुओं में इस शरद ऋतु को सर्वश्रेष्ठ बताई जाती है और इसी शरद ऋतु से फिर कार्तिक मास प्रारंभ होता है। तो पहले दिन से इतना ये महत्वपूर्ण उत्सव है। कई भक्त लोग शरद पूर्णिमा के दिन ऊपर छत पर चंद्रमा की किरणों के आगे खीर लगाते हैं और खीर का भोग राधा कृष्ण को अर्पण करते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इस मास को दामोदर मास भी कहा गया है क्योंकि यहां पे बहुत महत्वपूर्ण लीला हुई थी, यशोदा माता जी ने भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से बांधा था। लेकिन वास्तव में जो ये दामोदर मास है, श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को बताते हैं कि ये दामोदर मास का नाम इसलिए नहीं पड़ा, इसलिए भी है इसका महत्व कि यशोदा जी ने कृष्ण को बांधा था, लेकिन इसके पीछे एक रहस्य ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को भगवत तत्व की शमे ज्ञान दे रहे थे तो उन्होंने बताया चतुर्व्यूह बताया, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वसुदेव और संकर्षण। और ये चतुर्व्यूह फिर से अपना विस्तार करते हैं बारह विष्णु रूपों में। जब हम बारह तिलक लगाते हैं तो बारह विष्णु के नामों का उच्चारण करते हैं, तो ये जो बारह विष्णु हैं ये बारह मासों के अधिष्ठाता हैं। हर एक विष्णु एक मास के अधिष्ठाता हैं।
जैसे कि माघ मास के अधिष्ठाते हैं माधव और फागुन के हैं गोविंद। अब ये गोविंद अपने वृंदावन वाले गोविंद से अलग है, और चैत्र के हैं विष्णु और मधुसूदन है वैशाख मास के, और ज्येष्ठ के हैं त्रिविक्रमा और आशत के हैं वामन, श्रवण के हैं श्रीधर, भद्र के हैं ऋषिकेश, अश्विन पद्मनाभे कार्तिके दामोदर राधा दामोदर अन्य ब्रजेंद्र कोनार। चैतन्य महाप्रभु क्लियर कर रहे हैं इसमें कि अश्विन के हैं पद्मनाभ और कार्तिक के हैं दामोदर, और चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं ये जो दामोदर हैं वो नंद नंदन श्री कृष्ण से अलग है। नंद नंदन राधा दामोदर जी से ये अलग है, ये दामोदर विष्णु है जो कि इस कार्तिक मास से अधिष्ठाता है। तो ये दामोदर का एक अर्थ ये है, और दूसरा अर्थ ये है दामोदर। दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट, यानी कि यशोदा माता ने अपने पुत्र कृष्ण के पेट को रस्सी से बांध दिया। हम इस लीला के विषय में जानते ही हैं, बहुत सुंदर लीला है। तो वास्तव में यशोदा माता ने कन्हैया को रस्सी से नहीं बांधा, किससे बांधा था? प्रेम से बांधा था। तो अगर हम इस कार्तिक मास का दामोदर मास का पालन करेंगे तो हम भी इस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, इसका ही अर्थ है। और इस लीला में इस पूरे महीने में हम भगवान की भक्त वत्सल का तो देखते हैं कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। भक्त वत्सल का अर्थ होता है भगवान के 64 गुणों में से सबसे महत्वपूर्ण गुण है भक्त वत्सलता। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इस दामोदर लीला में हम देखते हैं कि भगवान भक्त विषयता, भगवान अपना गुण प्रकट कर रहे हैं जिसमें एक गुण है भक्त वशीयता। भगवान भक्त यानी कि अपने सेवकों के वश में हो जाते हैं। भगवान सुप्रीमली इंडिपेंडेंट हैं, परम स्वतंत्र हैं, लेकिन श्री कृष्ण को यह आनंद आता है कि अपने सेवकों के वश में हो जाए, और हम जो उनके सेवक हैं हम सोचते हैं हमें आनंद आएगा हम कृष्ण से भी स्वतंत्र हो जाए, और कृष्ण को भगवान समझने में अपने आप को आनंद नहीं आता कि मैं षड ऐश्वर्य पूर्ण हूं मैं भगवान हूं। कृष्ण को इसमें ज्यादा आनंद आता है कि उनके सेवक उनको प्रेम से बांध लें, वो प्रेम वश अपने सेवकों पर निर्भर रहें, भगवान इसमें आनंद की अनुभूति करते हैं। तो ये भगवान का चरित्र है भृत्यवशीयता, भगवान अपने सेवकों के वश में हो जाना चाहते हैं। और सेवक भगवान को अपने वश में कर सकते हैं प्रेम पूर्वक। तो यशोदा मैया ने कृष्ण को बांधा अपने प्रेम से, रस्सी से नहीं। कोई भौतिक रस्सी भगवान को नहीं बांध सकती, बड़े बड़े योगी लाखों लाखों साल तपस्या करके भी भगवान तक नहीं पहुंच सकते। तो केवल शुद्ध भक्ति के माध्यम से हम भगवान को, शुद्ध प्रेम से भगवान को अपने वश में कर सकते हैं। तो इस मास में अगर हम इस दामोदर व्रत का पालन करेंगे तो हम यही भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में उदित है। भगवान को भक्त वत्सल कहा गया है। वत्स कहते हैं गाय के बछड़े को। जिस जंग से गाय अपने बछड़े का इतना ख्याल रखती है और बछड़े को अपने हृदय के पास रखती है, इसी ढंग से भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं। भगवान अपने भक्तों की सेवा के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए हमेशा तत्पर है। वत्सल शब्द का एक और अर्थ होता है, वत्स शब्द का एक अर्थ होता है जो कि हृदय के समीप हो। तो जिस ढंग से भगवान दामोदर भक्तों को बहुत प्रिय हैं, उसी ढंग से ये दामोदर मास भी भक्तों को बहुत प्रिय है। आप सबको प्रिय है कि नहीं? हम सब प्रतीक्षा करते हैं। कोई भी नया व्यक्ति भी इस कौन में जब आता है श्रील प्रभुपाद जी की शरण में दामोदर मास में, तो उसके लिए बहुत ही स्मरणीय अनुभव होता है। और हम देखते हैं कि इस कार्तिक मास में मंगल आरती में हर प्रकार के भक्तों का दर्शन हो जाता है। कहीं ऐसे भक्त होते हैं जो पूरे साल नजर नहीं आते, और कितना सौभाग्य होता है कि उनको हम सुबह मंगल आरती में देखते हैं, और देख के बहुत खुशी होती है, क्योंकि श्रीमती राधारानी की ऊपर विशेष कृपा है कि उनको पकड़ के लाते हैं। ये दामोदर मास भगवान से अभिन्न है, तो दामोदर मास भी भक्तों पर बहुत कृपा करता है जो भक्त लोग इस दामोदर मास में व्रत का पालन करते हैं। भगवान भक्त वत्सल हैं, दामोदर मास भी भक्त वत्सल है, इसलिए दामोदर व्रत का पालन करने के लिए हमारे में उत्साह होना चाहिए। अगर हम दामोदर व्रत का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें दामोदर मास की कृपा मिलेगी। और जिस ढंग से वत्स शब्द का अर्थ है हृदय के समीप, तो इस दामोदर मास हमें दामोदर के, भगवान दामोदर के हृदय के समीप ले जाता है। तो इसलिए हमें जरूर इसका पालन करना चाहिए। रूप गोस्वामी जी ने जो भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया है, उसमें ये एक अंग है कि कार्तिक मास में प्रत्येक भक्त को विशेष व्रत का पालन करना चाहिए।
ये 64 अंगों में से 58 नंबर का अंग है। ये साधना भक्ति का अंग है। श्री प्रभुपाद बताते हैं साधना भक्ति का अर्थ है कि इसको मना नहीं करना और इसमें कोई तर्क नहीं करना। नो रिफ्यूजल, नो आर्गुमेंट्स। नहीं कर सकता जी ये, यानी कि साधना भक्ति के 64 के 64 अंगों का प्रत्येक गंभीर साधक को पालन करना चाहिए। और ये 58 नंबर का अंग है कि प्रत्येक भक्त को कार्तिक मास में कुछ व्रत लेना चाहिए, कुछ ना कुछ व्रत अवश्य लेना चाहिए। और अगर ये व्रत लेंगे तो हमें क्या होगा, दामोदर मास की कृपा मिलेगी। और दामोदर मास की कृपा मिलने से क्या होगा, हम भगवान दामोदर के हृदय के समीप जाएंगे और भगवान दामोदर हमें अपना शुद्ध प्रेम देंगे। और क्या चाहिए बताइए। कार्तिक मास की बहुत बहुत महिमा गाई गई है, कुछ महिमा का हम वर्णन करेंगे। तो दामोदर अर्थ का है, दामोदर शब्द का अर्थ है कि यशोदा माता ने श्री कृष्ण को अपनी प्रेम रूपी रस्सी से बांध लिया। और भगवान भले भक्त वत्सल, तो भगवान निश्चित रूप से हमें भी प्रेम देंगे अगर हम इस दामोदर व्रत का बहुत सख्ती से और गंभीरता से पालन करेंगे। चैतन्य महाप्रभु भी सनातन गोस्वामी को ये बता रहे हैं, सर्वथा शरणापति कार्तिक आदि व्रत चतुपष्टि अंग ऐ परम महत्व। ये परम महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का कि हम कार्तिक के व्रत का पालन करें। कोई पूछ सकता है कि गौड़िया वैष्णव में तो बताया गया कि हमें राधा दास्यम का पालन करना है, श्रीमती राधा रानी का दास बनना है, और हम जो सत्यव्रत मुनि द्वारा वंचित ये उचित ये जो दामोदर अष्टकम है जो कि नारद मुनि और सोनक आदि ऋषि को सुनाते हैं, पद्म पुराण से इसको लिया गया है, तो इसमें तो भगवान की बाल लीला का वर्णन किया गया है। और हमें तो बताया गया चैतन्य महाप्रभु हमें उन्नत उज्ज्वल रस माधुरी रस देने आए हैं और यही हमारे उद्देश्य भी होना चाहिए, तो इस बात को कैसे समझे। तो वास्तव में नाम दामोदर के पीछे एक और भी लीला है जो हमारे गौड़िया वैष्णव बताते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण को श्रीमती राधा रानी से निकुंज में मिलना था और भगवान किसी कारणवश समय पर नहीं पहुंच पाए और श्रीमती राधा रानी की प्रतीक्षा करती रहती है। और जब भगवान आते हैं, लेट आते हैं, तो ललिता आदि सखी श्रीमती राधा रानी को आज्ञा देती है कि एक लता लेकर वो भगवान की कमर से उसको बांध देते हैं, भगवान को बांध देते हैं। तो भगवान दामोदर, तो श्रीमती राधा रानी ने भी श्री कृष्ण को बांधा प्रेमवश उस लता से। तो एक राधा दामोदर के पीछे ये लीला है। तभी इसी दामोदर अष्टकम में ही होते हैं, नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। तो श्रीमती राधा रानी के साथ भी ये लीला है दामोदर जी की, श्री श्री राधा दामोदर जी की। तो इस ढंग से ये दामोदर शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। एक शब्द का अर्थ है कि भगवान विष्णु हैं जो कि इस मास के अधिष्ठाता हैं। दूसरे दामोदर शब्द के यशोदा दामोदर, जैसे यशोदा माता ने अपने प्रेम से बांधा। दूसरे से तीसरे हैं राधा दामोदर, जिसे श्रीमती राधा रानी ने भगवान को प्रेम से बांधा। और इसमें भगवान की भक्ति वशीयता, कैसे अपने सेवक के वश में हो जाते हैं और भगवान की भक्त वत्सलता, ये प्रकट होती है। और दामोदर मास भी भगवान दामोदर की तरह ही भक्त वत्सल है, और हम दामोदर मास व्रत का पालन करेंगे तो भगवान के हृदय के समीप जाएंगे। इस मास को कार्तिक मास भी कहा जाता है। तो कार्तिक शब्द का क्या अर्थ है, तो वैदिक शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूरे साल को 12 महीनों में बांटा गया है। और ये जो 12 प्रत्येक महीना नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार है, जिस प्रकार के नक्षत्र होते हैं उसी प्रकार से महीने का नाम पड़ जाता है। जैसे कि कुछ नक्षत्रों के समूह की स्थिति को विशाखा बोला जाता है, तो उस विशाखा, जब विशाखा नक्षत्रों की स्थिति होती है तो उस मास को वैशाख मास कहते हैं। इसी ढंग से कार्तिक मास में नक्षत्रों की स्थिति को कृतिका बताया जाता है। तो जब कृतिका नक्षत्रों की स्थिति होती है तो ये मास कार्तिक कहलाता है, ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है। लेकिन गौड़िया वैष्णव के अनुसार कार्तिक शब्द क्यों दिया गया है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का नाम क्या है, कार्तिका कुमारी। यानी कि श्रीमती राधा रानी की माता क्या नाम था, कीर्तिदा, तो उनकी पुत्री है तो कार्तिका कुमारी। इसलिए कार्तिक मास श्रीमती राधा रानी का मास है। और श्रीमती राधा रानी हम जानते ही हैं, करुणामा करुमयी करुणा भरीते सनक सनातन वरनीता चरिते राधे जयो जयो माधव दयिते गोकुल तारुणी मंडल महिते। रूप गोस्वामी ज्यादा उदित है। और श्रीमती राधा रानी करुणामयी है, प्रत्येक जीव की सेवा कृष्ण को हम स्थानांतरित होती है श्रीमती राधा रानी के माध्यम से, और श्रीमती राधा रानी की कृपा के बिना कोई भी जीव कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। और श्रीमती राधा रानी कृपामय है, करुणामय है। श्री कृष्ण करुणा के सागर हैं, श्री कृष्ण के अंदर करुणा है, और श्रीमती राधा रानी करुणा और प्रेम की रूप की मूर्ति है, करुणामय है। तो श्रीमती राधा रानी की करुणा को हम आकर्षित कर सकते हैं इस मास का पालन करके, इस मास में व्रत का पालन करके बहुत कृपा हमें प्राप्त होगी, बहुत कृपा प्राप्त होगी। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि और श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को रिकमेंड कर दें कि इस भक्त को आप अपने शरण में ले लीजिए। प्रभुपाद कहते हैं कि मूर्ख से मूर्ख भक्त भी क्यों ना हो, कृष्ण उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मूर्ख से मूर्ख तो बहुत स्कोप है हमारे लिए, किसी ना किसी ढंग से हम श्रीमती राधा रानी को आकर्षित कर लें, उनकी कृपा को आकर्षित कर लें, तो मूर्ख से मूर्ख भक्त को भी श्रीमती राधा रानी बोल देंगी ले लीजिए इनको शरण में, भगवान ले लेंगे। तो इतना सुंदर अवसर है हमारे सामने हम श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर सके। प्रत्येक भक्त का ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमें श्रीमती राधा रानी के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। श्रीमती राधा रानी के बताए हुए मार्ग को हम कैसे जानेंगे, जो कि कैसे जानेंगे कि राधा रानी हमें कौन सा मार्ग बता रही है भक्ति का, आचार्यों के माध्यम से। हमारे जितने भी गौड़िया वैष्णव आचार्य हैं और श्रीमती राधा रानी के बहुत ही अंतरंग पार्षद हैं, षड गोस्वामी, सबके सब छह मंजरियां हैं, मुख्य मंजरियां हैं, अष्ट मंजरियां, सबके सब हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो हमें इन छह गोस्वामी के द्वारा बताए हुए मार्ग का हम पालन करके श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और स्वरूप गोस्वामी जी ने भक्ति नवसान सिंधु में इस मास को ऊर्जा मास भी कहा है और इस व्रत को ऊर्जा व्रत भी कहा है। ऊर्जा का अर्थ होता है शक्ति। तो श्रीमती राधा रानी है ऊर्जेश्वरी, यानी कि इस ऊर्जा व्रत की ईश्वरी, और ऊर्जा यानी कि शक्ति, यानी भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो इस ऊर्जा व्रत के पालन करके हम श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करते हैं। और भक्ति रहमत सिंधु में गुरु गोस्वामी जी बताते हैं कि हर एक गंभीर भक्त को ऊर्जा आदर करना चाहिए। ऊर्जा आदर का अर्थ है कि इस ऊर्जा व्रत को आदर देना चाहिए, इस कार्तिक व्रत को, ऊर्जा व्रत को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आदर देना चाहिए। हमने बोला अभी राधा रानी के बताए हुए मार्ग पर हमें चलना है, यानी कि षड गोस्वामी के बताए हुए मार्ग पर हमें चलना है, और रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं हमें ऊर्जा व्रत का आदर देना चाहिए। और ऊर्जा व्रत का आदर देने का अर्थ है कि ऊर्जा व्रत का हमें पालन करना चाहिए। जब ऊर्जा व्रत का हम पालन करेंगे तो ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी को हम प्रसन्न करेंगे, और श्रीमती राधा रानी के प्रसन्न करके हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, उनके समीप जा सकते हैं। तो ये बहुत एक सुनहरी शब्द, बहुत छोटा शब्द है, बहुत बहुत ही अद्भुत अवसर है, निराला अवसर है कि हम थोड़ी सी भक्ति करके, थोड़ी सी सेवा करके राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी पाद बताते हैं कि कार्तिक मास में, दामोदर मास में हमें राधा कृष्ण की विशेष सेवा करनी चाहिए, उसका विशेष लाभ बताया गया है। और ये कार्तिक मास इतना करुणामय है, ये एक बहाना ढूंढ रहा है भक्तों पे कृपा करने के, एक्सक्यूज ढूंढ रहा है, बहाना ढूंढ रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि कब भक्त आएंगे और कृपा बांटी जाएगी। देखिए, भगवान केवल बहाना ढूंढ रहे हैं और कुछ नहीं, भगवान कृपा देना चाहते हैं, चाहे योग्य है अयोग्य है, कैसा भी कोई व्यक्ति है उसको कृपा मिल जाएगी। मथुरा मंडल महात्म्य में बताया गया है, रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि कार्तिक मास में कोई मजाक मजाक में ही वृंदावन में थोड़ी सी सेवा कर दे, मजाक मजाक में ही, तो उसको क्या हो जाता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। मजाक मजाक में, जोकिंगली बताते हैं, स्वल्प उरुक्रमा, इस मास में वृंदावन में स्वअल्प, बहुत थोड़ी सी सेवा कोई भी करता है, उरुक्रमा बहुत बड़ा परिणाम मिलता है, बहुत बड़ा। अब बहुत बड़ा परिणाम कैसे मिलता है, सबसे बड़ा परिणाम क्या हो सकता है, भगवान अपने किसी भी बद जीव को भुक्ति दे देंगे, भोग के बड़े साधन दे देंगे, मर्सिडीज गाड़ी मिल गई, ठाकुर जी की बड़ी कृपा हो गई, छोटे फ्लैट से बड़ी कोठी में पहुंच गए, ओ हो बहुत कृपा हो गई, है ना। और मुक्ति भी दे देंगे, कोई व्यक्ति कह रहा है बस मैं बहुत परेशान हूं तो उसको मोक्ष भी प्रदान कर देंगे। लेकिन अपनी शुद्ध भक्ति भगवान छिपा कर रखते हैं, भगवान की तिजोरी में इस सबसे महंगा धन है, बहुत विशेष धन है, प्रेम धन भगवान हर किसी को नहीं देते, क्योंकि जैसे ही प्रेम दिया भगवान उस भक्त के वश में हो जाते हैं। तो बहुत विशेष आदान प्रदान, स्पेशल डीलिंग जिनके साथ होती है उनको देते हैं। भगवान भी इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करते, बद्ध भी आसानी से सरेंडर नहीं करता, भगवान भी आसानी से सरेंडर नहीं करते। कृष्ण केवल सरेंडर करते हैं शुद्ध भक्ति के आगे, शुद्ध प्रेमामय भक्ति के आगे ही कृष्ण अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, शरणागत कर देते हैं, और फिर वो शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं, शुद्ध प्रेम देते हैं। तो भगवान प्रेम किसी को भी नहीं देते, भक्ति मुक्ति दे देते हैं। लेकिन कार्तिक मास में वृंदावन में मथुरा मंडल में कोई मजाक मजाक में भी थोड़ी सी सेवा कर देता है तो भगवान उसको कृष्ण प्रेम दे देते हैं। आप सोचिए, इससे लगता नहीं कि भगवान बहाना ढूंढ रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है, है ना, कोई तर्क किसी द्वारा हम समझ नहीं सकते, है ना। इसलिए कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा कोई समझना चाहे तो समझ ही नहीं सकता। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा श्रीमती राधा रानी कार्तिक मास में बहाना ढूंढ रहे हैं किसी न किसी ढंग से भक्त हमारी शरण में आए, मजाक मजाक में कोई थोड़ी सी भी सेवा कर देंगे भगवान उसको उरुक्रमा। भगवान गीता में क्या बताते हैं, ना ही अभिक्रम ना शस्ति प्रत्युवायो न विद्यते स्वप्रभस्य धर्म से त्रायतो महतो बयात। कोई थोड़े से भी धर्म का पालन करते हैं भगवान उसकी बड़े से बड़े भय से रक्षा करते हैं। तो इस कार्तिक मास में कोई थोड़े से भी सेवा कर देता है तो भगवान केवल भय से रक्षा ही नहीं करते, बड़े से बड़ा परिणाम दे देते हैं, बड़े से बड़ा फल दे देते हैं, और वो क्या है, अपना प्रेम, कृष्ण प्रेम। तो कौन मूर्ख व्यक्ति होगा जो इस ऑफर को रिजेक्ट कर देगा। इसलिए कार्तिक मास के एक एक क्षण का हमें सदुपयोग करना चाहिए। हमें यही सोचना चाहिए भगवान ने बोला मजाक मजाक में, तो हम तो मजाक ही करते रहेंगे, मजाक मजाक में मिल तो जाएगा ही, कोई बात नहीं। नहीं, हमें जानते हैं तो हमको बहुत एक एक क्षण इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये मास बहुत विशेष मास है, और इस मास के महिमा के बारे में बताया गया है कि अगर कोई जैसे हम दीपदान भी करता है, छोटी सी सेवा है, भगवान को दीप दिखाना है, दीपदान करते ही उसको क्या प्राप्त होगी, वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाएगी। दीपदान करते ही हम सब इसकी कथा के जानते हैं, काफी हरि भक्ति विलास में भी ये कथा आती है, और इसके अलग अलग वर्जन है, थोड़ा बहुत से बदलाव आता है कि एक बार जैसे एक चूहा था, भगवान के आगे दीप जल रहा था और चूहे को भूख लगी, घी खाने आया। जो चूहे होते हैं उनको तेल वाले पदार्थ बड़े पसंद होते हैं, किसी घर में चूहे हो तो तेल वाले पदार्थ से उसको आकर्षित कर सकते हैं। हम लोग सूखी ब्लड रखते तभी तो चूहा आता नहीं है, तो तेल वाले तभी परेशान होते हैं और फिर उसको मार देते हैं, फायदा नहीं, उसको पाप करते हैं। एक तेल वाला पदार्थ रखिए, चूहा जरूर आएगा। तो घी वाली जोत थी तो चूहा उसको खाने आया। खाने से क्या हुआ, चूहे को जैसे उसने घी जल रहा था उस जोत पे उसने मुंह रखा तो चूहे को आग लग गई, तो बेचारे को दर्द हो रहा था, तो आग लगी तो उछल रहा था और उछलते उछलते उसने प्राण त्याग दिया। अब भगवान तो बहाना ढूंढ रहे हैं, देखो उसकी कोई इच्छा नहीं है, वैसे तो भगवान को भावग्राही बताया गया, भगवान को भावग्राही बताया गया ना। अब चूहा घी खाने आया था और उसको आग लग गई और अपनी जान बचाने के लिए बेचारा उछल रहा था, भगवान ने बड़ी दीप दिखा दिया, चलो बैठ। देखिए, तो बताया जाता उसको अगली योनि में एक मनुष्य की योनि मिलती है और उसने भक्ति की और भगवान के धाम चला गया। कितना सिंपल, किसी दूसरे उसने कथा में बताया जाता है कि उसको मनुष्य योनि प्राप्त हुई, बाद में उसकी मृत्यु हुई, जब मृत्यु हुई तो उसने कुछ पाप किए हुए थे तो यमदूत उसको लेने आ गए, जब यमदूत लेने आए तभी वहां पर विष्णु दूत आ गए और विष्णु दूत बोला ये नहीं जा सकता, बोले क्यों, क्योंकि इन्होंने भगवान को दीप दान दिखाया था। तो यमदूत फिर से कंफ्यूज होकर यमराज जी के पास, ये क्या हो रहे हैं, तो यहां यमराज विष्णु बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिसने कार्तिक मास में मेरे ईश्वर भगवान को दीप दिखाया है उसके ऊपर आप हाथ नहीं लगा सकते। तो निश्चित रूप से कोई दीपदान करता है वो वैकुंठ चला जाता है। और दीपदान में कई तरह के बताए गए हैं, एक तो जैसे देसी घी में हम दीपदान करते हैं, आजकल देसी घी नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, हम तेल से हम कर देते हैं। फिर बताया गया दीपमाला, कई लोग भक्तों की दीपमाला बनाकर भगवान को अर्पण करते हैं, कई शिखर दीप अपने बिल्डिंग में मकान के ऊपर या मंदिर के शिखर के ऊपर दीप रखते हैं, कहीं आकाश दीप, कहीं उनको पहले पतंग उड़ाने का शौक होगा, है ना, तो पतंग उड़ाते थे, कोई बात नहीं, पतंग में दीप रखकर टांग कर ऊपर छोड़ सकते हैं राधा कृष्ण के गुणगान के लिए। कितने वक्त करेंगे आकाशदीप? तो आकाशदीप कर सकते हैं, शिखर दीप कर सकते हैं, दीप माला कर सकते हैं, दीप भगवान को दे सकते हैं, कुछ करें। और दीप करने से, प्रतिदिन दीप दिखाने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और विशेष कर जाए भगवान के मुख के ऊपर, हम मुख को दीप दिखाते हैं भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। देखिए क्या है, कोई हमारे मुख पे थोड़ा सी लाइट मार दे तो हम प्रसन्न होते हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। केवल ये करना है भगवान को, खाली दीप दिखाना है। वैदिक काल में क्या होता था कि मंदिर में बिल्कुल अंधेरा होता था और भगवान के दर्शन भक्त लोग दीप से करते थे, दीप दिखा के चरणों से फिर ऊपर जाके हम आते थे। इसलिए हम मंदिरों में सायंकाल में बिल्कुल अंधेरा कर देते हैं, बहुत कम रोशनी होती है, और हम कोशिश करें कि दीप से भगवान के प्रति उनका दर्शन करें और फिर मुखारविंद भगवान को दीप दिखाएं, तो इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ा सा कुछ, इतना केवल दीप दिखाने मात्र से ही इससे मालूम नहीं चलता कि भगवान बहाना ढूंढ रहे हैं। आप में से कोई फर्क समझ सकते हैं, मैं पिछले 10 साल से दीप दिखा रहा हूं, वो चूहा चला गया वैकुंठ में, तो यही हूं अभी, और लगता भी नहीं कि मैं जाऊंगा वैकुंठ में। हाँ? आता नहीं आता है ना। और कोई शुद्धिकरण हो नहीं रहा, अनर्थ बढ़ रहे हैं। हर कार्तिक में दीप तो जरूर दिखाता हूं, पता नहीं क्या हो रहा है, और लगता भी नहीं इस जीवन में जाऊंगा, तो क्या से समझ इन बातों को। हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी जी कथा लिख रहे हैं, क्या समझे। तो ये कथाएं अतिशयोक्ति नहीं है, एग्जैगरेशन नहीं है, कि ऐसे मन बहलाने के लिए, झूठा हमारी झूठा अंधविश्वास जागृत करने के लिए ये सब कथाएं, ऐसा नहीं है, ये वास्तविकता है। हाँ, ये एक स्पेसिफिक केसेस है, ये कुछ स्पेसिफिक केसेस है, यानी कि हम भी, हमारे साथ जरूर ऐसा होगा। हम लोग ऐसा नहीं कि निश्चित रूप से दिखा के हमारा वैकुंठ जाना गारंटेड है, मतलब गारंटेड है यानी कि इसी जीवन में हम वैकुंठ जाने के मार्ग पर पूर्ण रूप से स्थित है, वैकुंठ जाना हमारा सुनिश्चित है। कितना जाएंगे, अभी जाएंगे या बाद में जाएंगे, इसमें हमारे ऊपर, हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन हम कार्तिक मास में भगवान को दीपदान कर रहे हैं, तो हमारा भगवत धाम जाना सुनिश्चित है, ये पक्का है, ये पक्का है। अगर हम साथ साथ और अंगों का क्षण से पालन करते हैं और अपराधों से बचते हुए प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का जप कीर्तन करते हैं, तो निश्चित रूप से हम कर जाएंगे। ये भक्ति के जितने भी 64 अंग हैं, ये वास्तव में हमारी हरि नाम के प्रति रुचि बढ़ाते हैं। कोई कह सकते हैं चैतन्य महाप्रभु ने ये बोला है, हरे नाम एव केवलम, और यहां पर ये बता रहे हैं कि कार्तिक आदि व्रत परम महत्व, तो कैसे समझे इन बातों को। तो ये 64 अंग, जो इन 64 अंगों में, 64 अंगों का राजा है वो हरि नाम है, और सबके सब उसके सहायक है। और वास्तव में हरि नाम, भक्ति नो ठाकुर जी कहते हैं, मुक्त जीव लेते हैं। हम लोग तो अपराधपूर्ण नाम लेते हैं, हम अपराधों से मुक्त हो सके और हरि नाम के प्रति हमारा आकर्षण बढ़े, इसलिए भक्ति में 64 अंग बताए गए। तो इसका भी बहुत ही ध्यान पूर्वक अच्छे ढंग से हमें पालन करना चाहिए। जैसे कि इन 64 अंगों में से एक अंग है स्तव पाठ। स्तव का अर्थ होता है कि भक्त लोग अपने हृदय से भगवान का गुणगान करते हैं, कुछ प्रार्थनाएं करते हैं। श्रीमद भागवतम पूरे स्तव पाठ से है, अलग अलग प्रार्थना है, कुंती महारानी की प्रार्थना स्तव पाठ है, गजेंद्र की प्रार्थना स्तव है पाठ है। तो कार्तिक मास में हमें स्तव पाठ करना चाहिए, दामोदर अष्टकम ये स्तव पाठ है। तो ये शास्त्रों में दी हुई प्रार्थना है, ये शास्त्रों में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, भक्तों के अपने हृदय की इच्छाएं भगवान के गुणगान करते हुए, तो इसका हमें प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। स्तव पाठ करने से क्या होता है, हमें भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है और जिन भक्तों ने इसको गाया है उनकी भी कृपा हमें प्राप्त होती है। हम भगवान के दर्शन करने आए, ब्रह्म संहिता का उच्चारण कर सकते हैं, ब्रह्म संहिता भी स्तव पाठ है। और विशेषकर कार्तिक मास में गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थना का विशेष महत्व बताया गया है, गजेंद्र मोक्ष भी स्तव पाठ से था। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं हमें कुछ ना कुछ ऐसी स्तुतियां प्रार्थनाएं हृदय से हृदयंगम होनी चाहिए, हृदय से याद हो जानी चाहिए, क्योंकि जिस जंग से गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिस जंग से गजेंद्र को अपने पिछले जन्म की हुई प्रार्थनाएं याद आ गई, इसी ढंग से कुछ प्रार्थनाएं हमारे हृदयंगम होनी चाहिए कि कुछ भी संकट आए वो प्रार्थनाएं हमसे निकले। और सबसे बड़ा संकट है मृत्यु का संकट, तो कुछ प्रार्थनाएं हम ऐसे याद कर सकते हैं। विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सारी प्रार्थनाएं याद करा देनी चाहिए, चाहे उनको अर्थ मालूम हो या ना हो। तो क्या होता है, एक बार उनको अच्छे ढंग से याद हो गई, बाद में अच्छे ढंग से उसका रसास्वादन कर सकते हैं। तो बच्चों को गाने याद कराने चाहिए, जॉनी जॉनी यस पापा वो पुनर्मा, इससे अच्छा ये है ब्रह्म संहिता याद कराएं, शिष्टाष्टकम याद कराएं, है ना, बड़े गर्व से हमें बताना चाहिए, बड़े शिष्टाष्टकम सुनाओ, तो शिष्टाष्टकम सुनाएं। ये सब प्रार्थनाएं स्तव पाठ हमें कार्तिक मास में, ये 64 अंगों में से एक अंग है, इसका विशेष महत्व बताया गया है। 64 अंगों में से एक अंग है तुलसी महारानी की सेवा करना, है ना। तुलसी महारानी की छोटे छोटे स्तर से भी सेवा कर सकते हैं, प्रतिदिन जल अर्पण करना, आरती करना, परिक्रमा करना, बताइए, केवल परिक्रमा करने मात्र से, दर्शन करने मात्र से, छूने मात्र से, दर्शन करने मात्र से ही हमें लाभ हो जाएगा, और कार्तिक मास में करेंगे तो विशेष लाभ हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, एक भक्त अगर तुलसी पे चंदन लगा के भगवान के चरणों में लगाता है, ये उसके लिए टॉप मोस्ट ब्लिस है, सर्वोत्तम आनंद है एक भक्त के लिए तुलसी पे चंदन लगा के भगवान के चरणों पे लगाना। कोई भौतिकवादी व्यक्ति सुनेंगे, बोले कौन सा आनंद है इसमें, एक पत्ते पे चंदन लगा के लगा दिया, इसमें कौन सा आनंद है। तो ये भाव की बात है, एक भक्त अगर चंदन लगाकर तुलसी के भगवान के चरणों में लगा देता है। बिलमंगल ठाकुर जी प्रार्थना करते हैं तुलसी महारानी से कि आप तो भगवान की शरण में चरणों में हमेशा ही रहते हो, जरा बताओ कैसे हैं भगवान के चरण। कोई व्यक्ति आता है मायापुर से, आके आता है बोले कैसे है मायापुर, जो नहीं गया कोई अमेरिका से आता है, बड़े बताइए वो देश कैसा है। तो तुलसी महारानी हमेशा भगवान के चरणों में रहती है, तो बिलमंगल ठाकुर पूछते हैं कैसे हैं भगवान के चरण, कैसे हैं उनको बताना, हम ही उनकी चरणों की शरण ग्रहण करना चाहते हैं। इवन वैकुंठ लोकों में लक्ष्मी जी भी भगवान की आराधना तुलसी दल और तुलसी मंजरियों से करती है। वैकुंठ में तरह तरह के सुगंधित पुष्प हैं और तुलसी महारानी को बोला गया पुष्प सारा, सारे के सारे पुष्प में सबसे महत्वपूर्ण पुष्प। वैकुंठ लोकों में प्रभुपाद भागवतम तीसरे स्कंद में लिख रहे हैं एक हर चीज चिन्मय है, तो सबसे प्रिय भगवान को तुलसी है और सबसे महत्वपूर्ण पुष्प सारा तुलसी है, तो बाकी पुष्पों को फूलों को तुलसी देवी से ईर्ष्या नहीं होते कि भगवान इसी को क्यों प्रेफरेंस देते हैं भाई, हमें क्यों नहीं, हम ही बड़े सुगंधित हैं, नहीं, सबके सब बहुत प्रसन्न होते हैं कि भगवान को तुलसी अति प्रिय है। तो तुलसी की थोड़ी सी भी सेवा करें, हम लोग भगवान के लिए कार्तिक मास में व्रत ले सकते हैं, भगवान को मंजरियां तोड़कर लाए, भगवान को अर्पण करें, तुलसी भगवान को अर्पण करें, क्या है इसमें, थोड़ी सी सेवा है। 64 अंग में से एक अंग है, भगवान राधा रानी प्रसन्न, कृपा मिल गई, भगवान बहाना ढूंढ रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास कर लें, बस थोड़ा सा। और कई लोग बता सकते हैं कि हमारे घर में तो विग्रह नहीं है, तो हम तुलसी जी को, हम ब्राह्मण दीक्षित भी नहीं है, आल्टर में भी नहीं जा सकते, कैसे तुलसी को चंदन लगा के हम लगाएंगे। कोई बात नहीं, घर में हमारा मंदिर होगा, लेमिनेशन होगा, लेमिनेशन के ऊपर भी लगा सकते हैं, उसी के बराबर है, बताइए, तुलसी लीजिए, चंदन लगाइए और लेमिनेशन पे लगा दीजिए, कितना आनंद है देखिए, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो भगवान तो ऐसे कहते हैं बहाना ढूंढ रहे हैं कृपा देने के लिए, केवल 30 दिन है, लिमिटेड ऑफर, यू नो, अनलिमिटेड ऑफर फॉर लिमिटेड डेज, अनलिमिटेड ऑफर, भगवान का प्रेम अनलिमिटेड है, फॉर लिमिटेड डेज, 30 डेज, है ना, इसका हम पूरा लाभ उठाएं। और हम बहुत से व्रत ले सकते हैं, क्या करना चाहिए, अक्सर लोग ये पूछते हैं कार्तिक मास में क्या सेव करें। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी जब 1972 में राधा दामोदर मंदिर आए, तो प्रभुपाद ने चिट्ठी लिखी भेजी, मैं ऊर्जा व्रत करने आ रहा हूँ। तो उसमें गुरुदास जी थे वृंदावन में, तो गुरुदास प्रभु प्रभुपाद जी के पास गए, बड़े उत्साह से पूछा ये ऊर्जा व्रत क्या होता है, इसका कैसे पालन करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, 24 घंटे 30 दिन लगातार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ना सोना ना कुछ खाना, नो ईटिंग नो स्लीपिंग, ओनली चैंटिंग 24 आवर्स अ डे फॉर 30 डेज, ये है ऊर्जा व्रत। गुरुदास जी ज्यादा उत्साहित नहीं थे बोलने वो चुप रहे, लेकिन प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य ये है, सबसे बड़ा व्रत है इस कार्तिक मास में, हम ज्यादा श्रवण कीर्तन करें, हियरिंग एंड चैंटिंग को बढ़ाएं, सबसे बड़ा व्रत है। हम लोग जब सुनते हैं कार्तिक मास की बहुत महिमा बताई गई है, केवल सुबह उठने मात्र से ही सुकृति मिल जाती है, सुबह उठकर स्नान करने मात्र से ही, कुछ मत करिए, और सुबह उठकर स्नान करके मंगल आरती में आ गए तो बहुत महत्व है, भगवान के दर्शन कर लिए। कम से कम कार्तिक मास में प्रतिदिन हमें भगवान के दर्शन करने अवश्य आना चाहिए, नहीं आ सकते बहुत मजबूरी है तो घर में दीपदान करें, लेकिन कम से कम दिन में एक बारी अवश्य आएं। और कुछ भक्त लोग जैसे जमीन पर सोने का प्रयास कर सकते हैं, ये ज्यादा बड़ी ऑस्टेरिटी नहीं है, गद्दा बिछा के जमीन पर ही हम सोएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। अब कई बार हम सुनते हैं इतना महत्व है, तो हम ले लेते हैं कि हम भी बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे, है ना, केवल एक बार फ्रूट खा लेंगे, कुछ नहीं खाएंगे, है ना, केवल पानी पिएंगे, तो उत्साह अच्छा है, या बिल्कुल दो घंटे सोएंगे। तो जो एक बार हम व्रत ले लें तो बताया गया है कि हमें उस व्रत का पूरा पालन करना चाहिए। हमारे साथ हो जाते हैं, अपने व्यक्तिगत अनुभव बता रहे हैं, चतुर्मास आया था, बड़े उत्साह से व्रत रखा, 15-20 दिन एक महीना किया, उसके बाद धीरे 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 उत्साह कम हो जाता है, प्रैक्टिकल नहीं है, हो नहीं पाता, छोड़ो रहने दो, उत्साह कम हो जाता है, तो ये ठीक नहीं है। इससे मालूम चलता है कि हम गंभीरता से नहीं ले रहे। शुरू शुरू में हम ले लें, हम कुछ नहीं खाएंगे, बाद में हमारा उधर मन को आइडिया देता है, क्या है, किस चक्र में फंस गया भाई, अरे अबे क्या कर रहा है, माला हो नहीं रही, रीडिंग हो नहीं रही, कमजोर की तरह पड़ा हुआ हूं, मैं खिन हो रहा हूं, ले लो चलो खा लो, छोड़ो कोई दूसरा आएगा, चलो चलो कमजोर हो गए, चलो खाओ, नाचो गाओ, चलो तो फिर हम व्रत तोड़ देते हैं। तो इसलिए व्रत लेना जरूर है, प्रत्येक भक्त को व्रत जरूर लेना है, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार लें, जिसका हम पूरा महीने पूरा पालन कर सके। होता क्या है, व्रत ले लेते हैं, जब पालन नहीं कर पाते तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, अगली बार जब फिर व्रत लेने की बारी होती है, छोड़ो ये सब बातें ही हैं, अब नहीं होता, नहीं कर पाएंगे, तो क्या होता है, एक बहुत बड़ी कृपा का अवसर हम खो बैठते हैं। और सभी शास्त्रों में ये भी बताया गया है कार्तिक मास के व्रत की इतनी महिमा है, अगर कोई कार्तिक मास के व्रत का पालन नहीं करता तो बहुत बड़ा खतरा है, ये वास्तव में बताया गया, हरि भक्ति विलास में बताया गया। इसका मतलब हम भक्ति में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, तो ये हमारी भक्ति के लिए बहुत हानिकारक है अगर हम कार्तिक मास में कोई व्रत नहीं लेते। और व्रत लेकर हम पूरा पालन ना करें ये भी ठीक नहीं है, इसलिए हम एक ऐसा व्रत चुने जिसका हम पूरे मास में पालन कर सके। हम अपनी परिस्थितियों को देखें, कैसे ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, घर में कितने काम है, बच्चों को कैसे संभालना है, क्या क्या सेवाएं हैं, कितना बाहर जाना है, कितना अंदर रहना है, कैसी परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार हम व्रत चुने, है ना। तो कुछ आसान आसान व्रत जो कि सब कोई पालन कर सकते हैं, अपनी माला बढ़ाएं, और विशेषकर कार्तिक मास में बताया गया है कि अगर कोई उत्साहपूर्वक खुशी खुशी भगवत गीता पढ़ता है तो वो इस जन्म मृत्यु के संसार में दोबारा वापस नहीं आता। ये देखो, खुशी खुशी प्रतिदिन हम 30 मास ले सकते हैं, खुशी खुशी उत्साहपूर्वक, ये नहीं पढ़ना यार व्रत ले लिया था क्या करें, फंस गए करके किसी ने सोते सोते पढ़ लिया, सोते सोते नहीं लिखा, हंसते हंसते आनंद पूर्वक कोई भगवत गीता पढ़ेगा वो जन्म मृत्यु के सागर में नहीं आएगा। तो भगवत गीता भी है, श्रीमद भागवतम भी है, तो हम रीडिंग का ले सकते हैं। अक्सर हमारे राधिका रमन जी के समुदाय में भक्त लोग शास्त्रों के पढ़ने में बहुत कमजोर है ना, भगवान के सामने सत्य बोलने में कोई हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग शास्त्रों के अध्ययन में थोड़े कमजोर हैं, ध्यान पूर्वक अध्ययन नहीं करते। और अगर हम श्रीमती राधारानी से कृपा मांगे कि इस पूरे 30 दिन में प्रतिदिन कुछ समय के लिए निर्धारित कर लें, 30 मिनट 40 मिनट एक घंटा जो हम कर सकते हैं प्रार्थना करके, प्रतिदिन पढ़ सको और समझ सको भगवद गीता श्रीमद भागवतम, तो निश्चित रूप से हमें कृपा मिलेगी और उसका हम पालन करेंगे। तो ये जिसमें हमें ज्यादा कष्ट नहीं होगा, हम अपनी रीडिंग बढ़ा सकते हैं। और ये बताया गया है ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करें, कार्तिक मास राधा रानी का महीना है, इस मास में हमें अपराधों से बचना है। अपराध करने का अर्थ है हम राधा रानी से दूर हो जाते हैं, राधा रानी की कृपा से वंचित हो जाते हैं, और कार्तिक मास राधा रानी का मास है, तो हम ऐसे लोगों का संग ना करें। कुछ ऐसे भक्त भी होते हैं जिनकी थोड़ी आदत हो जाती है, कुछ अपने जीवा पे कंट्रोल नहीं, कुछ निंदा या कुछ, ऐसे हम भक्तों से बचें। और बिल्कुल पजल्पा ना करें, कार्तिक मास पजल्पा के लिए नहीं है, और कार्तिक मास में इंद्र तृप्ति ना करें, बचें इंद्र तृप्ति से। कुल मिला के सरल जीवन जिए, कोई ऐसा व्रत ना ले लें जिससे कि लाइफ और कॉम्प्लिकेट हो जाए। उस व्रत के पालन के विषय में हम वही सोचते रहें, ये करना है वो करना है, और जो मुख्य कार्य है श्रवण कीर्तन बढ़ाना, उससे हम वंचित हो जाए। वो क्या है, आराधे तो यदि हरि तपसो तथा किम, ना आराधे तो यदि हरि तपसो तथा किम। आराधे तो यदि हरि, अगर हरि की आराधना कर रहे हैं फिर किस तपस्या की आवश्यकता है, और अगर हरि की आराधना नहीं करें फिर तपस्या का लाभ ही क्या है। अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो तपस्या क्या करेगी, और भक्ति कर नहीं रहे तो फिर तपस्या का लाभ ही क्या है। तो कुछ ऐसी तपस्या ना ले रहे कि हम उसी तपस्या करने में फंस जाएं, नियम आग्रह हो जाए, और उसका जो मुख्य उद्देश्य है, इस व्रत लेने का उद्देश्य यह है कि अपने आहार और निद्रा की आवश्यकता को कम करके, समय बचा के, अपने प्रयासों को बचा के, अपनी एनर्जी सेव करके, हम ऊर्जेश्वरी उस जो अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर सके। और वो सबसे बड़ी सेवा है श्रवण कीर्तन करके, ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करें, अपनी माला बढ़ाएं, भक्तों की सेवा करें। बताया गया भक्तों की सेवा का बहुत महत्व है, कैसे हम भक्तों की सेवा कर सकते हैं, अवसर ढूंढें। दान का बहुत महत्व क्या है, दिया गया है कार्तिक मास में हम दान दें। बताया गया है कि कार्तिक मास में जो कोई दान देता है वो बड़े से बड़ा दान भी कार्तिक मास के व्रत के का पालन करने के 1/1,000,000 क्या है, लाखवां हिस्सा भी नहीं है। अगर कार्तिक मास का पालन करता है, बड़े से बड़ा दान भी उसके आगे छोटा सा है। और विशेषकर फिर कार्तिक मास में दान देना और महत्वपूर्ण बताया गया है। कार्तिक मास में हम दान दे सकते हैं, और बताया गया है कि कार्तिक मास में अगर कोई ये व्रत लेता है कि केवल दिन में एक बार ही खाएगा तो बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, यशस्वी बन जाता है, बहुत शक्तिशाली हो जाता है, दिखने में कमजोर दिखेगा लेकिन बड़ा शक्तिशाली हो जाएगा, और बहुत हीरोइक हीरो बन जाएगा, सब जान जाएंगे केवल एक बार ही खाते हैं। तो ये भी और ब्रह्मचर्य का हम पालन करें। और एक विशेष बहुत ही अच्छा है कि रूप गोस्वामी द्वारा रचित प्रतिदिन कोई उपदेशामृत का पाठ करें। उपदेशामृत के पाठ का इसका विशेष महत्व दिया गया, भगवत गीता, भागवतम, भागवतम का हम श्रवण करें। भागवतम के श्रवण का लाभ बताया गया, उसको 18 पुराणों के श्रवण का लाभ मिल जाता है कार्तिक मास में, भागवतम के श्रवण मात्र से ही। तो इस ढंग से हम देख सकते हैं, हम व्रत अवश्य लें लेकिन व्रत प्रैक्टिकल हो, व्यावहारिक हो, अपने अपने लीडर से हम कंसल्ट कर लें, लेकिन व्रत अवश्य लेना है। तो जितने भी यहाँ पे भक्ति विषय लीडर्स हैं, अपने भक्ति विषय में सबको बताएं, कुछ लोग नहीं आ पाए होंगे, कि हर एक पूरे समुदाय में हर एक भक्त को कुछ ना कुछ व्रत जरूर लेना है। दो माला बढ़ा दें, चार माला बढ़ा दें, कुछ किसी को मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है, एक मास के लिए मीठा त्याग दें, इससे कृपा मिलती है ना। ऐसा होगा कि अगले जैसे फिर कार्तिक मास खत्म होगा पहले दिन हम बहुत मीठा खा लेंगे, लेकिन फिर धीरे 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 मीठे से रुचि कम हो जाती है, किसी का और कोई ऐसा आकर्षण है जो उसको बहुत उसको शर्मदायक स्थितियों में डाल देता है, क्योंकि हमारे जो ये भौतिक आकर्षण है हमें बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन में कई बार ले आते हैं, भक्तों के बीच में पकड़े जाते हैं रंगे हाथ या कुछ। तो ऐसी कमजोरियां अगर हमारी हैं तो ऐसी कमजोरियों से बचने के लिए उसको व्रत ले सकते हैं, आगे से इस कार्तिक मास में कम से कम वो कार्य नहीं करूंगा। तो ऐसे स्थूल इंद्र तृप्ति के कार्य से हम बचने का प्रयास करें, तो उसके लिए हम प्रार्थना करें, प्रभुबाजी से प्रार्थना करें, लेकिन हम ऐसे व्रत लें जिसका हम पालन कर सके। और सबसे अच्छा क्या है कि कुछ भक्तों का समूह मिलकर ग्रुप में डिसिप्लिन हो जाता है, सब ग्रुप भक्त लोग मिलकर इकट्ठा कर सकते हैं कि चलो हम मिलकर लेते हैं कि प्रतिदिन एक घंटा पढ़ेंगे, तो ये टाइम हम निर्धारित करेंगे, इकट्ठा पढ़ लेंगे तो एक दूसरे को ले आएंगे, किसी का कुछ व्रत है, किसी का कुछ व्रत है, किसी का कुछ व्रत है, तो हर कोई अपने अपने व्रत के जुगाड़ में लगा रहेगा। तो एक दूसरे की सेवा तो भूल गया, मैं ये करना भाई, मैंने ये व्रत लिया था, कोई अपना कर रहा है, कोई अपना कर रहा है ना, तो उससे बड़ी परेशानी हो जाएगी, ऑर्गेनाइज करने में बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो अगर सबका एक व्रत होगा, समूह बना लेंगे, एक ही व्रत ऐसे करना है, तो आसानी हो जाएगी और एक दूसरे को देखकर उत्साह भी मिल जाएगा, है ना। तो कुछ भक्त लोग समूह बना सकते हैं कि प्रतिदिन मंगल आरती आने हैं, कुछ ये बना सकते हैं हम प्रतिदिन उपदेशामृत इकट्ठे पढ़ लेंगे, भगवद्गीता इकट्ठा पढ़ लेंगे, है ना, इससे हमारी रीडिंग भी बढ़ जाएगी और डिसिप्लिन भी हो जाएगा। और कुछ बोल सकते हैं कि हम मिलकर आके मंदिर में ये सेवा करेंगे, भक्तों की ऐसी हम सेवा करेंगे, ये दान देंगे, तो मिलके हो जाता है तो अच्छा होता है। धाम यात्रा का बहुत महत्व बताया गया है, वृंदावन में जाके हम कुछ सेवा करें, अब प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस आएगा तो वहां पे हम जाके भक्तों को, पूरे विश्व भर से भक्त आएंगे, उनको हम प्रसाद सेवा करें, कैसे भी उनकी सेवा मिलती है हम करें, वृंदावन की छोटी सी सेवा बहुत बड़ा परिणाम मिलेगा, है ना। तो सब कुछ बहुत से ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन हम कई बार क्या सोचते हैं कि व्रत करनी ऐसी तपस्या करनी है जिससे हम हीरो बन जाए, है ना। तो वो उस भाव से बचना है। हमारे असली हीरो कृष्ण ही हैं, इनको आनंद देना है। तो ऐसी हम तपस्या करें जिससे हमारा श्रवण कीर्तन बढ़े, श्रवण कीर्तन बढ़े और उससे हम श्रीमती राधा रानी की कृपा को आकर्षित कर सके। ठीक है ना। कार्तिक मास की, दामोदर व्रत की, तो आप सबको शुभकामनाएं कि आप सबको बधाई भी, ये वास्तव में हमारे लिए बधाई का उत्सव है। इतनी बड़ी कृपा, कार्तिक मास प्रतीक्षा कर रहा है कि कब पंजाबी बाग मंदिर के भक्त आएंगे और कृष्ण प्रेम प्राप्त करके ले जाएंगे, है ना। इतने बड़ा तो हम सब शिला प्रभुपाद जी की असीम 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 कृपा से हम बधाई के पात्र हैं। इतना परम सौभाग्य हमें मिल रहा है और हम आप सबको शुभकामनाएं भी कि जो व्रत ले हम उसका हम दृढ़ता से पालन कर सके। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, चैतन्य महाप्रभु की, चैतन्य चरितामृत की, स्वरूप गोस्वामी पाद की, हिताय गौर प्रेमानंदे।